أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات آپ دیکھیے کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں نا یہ ہمارا مستقبل متعین کرتے ہیں آپ تو یہ سوچ کے آتے ہیں نا کہ چلیں ایک شارٹ کورس ہے ہم کر لیں چلیں قرآن پاک کو دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے بہت اچھی بات ہے شروع میں انسان یہی سوچ لے کے جاتا ہے یا آتا ہے کسی بھی جگہ پہ دین سیکھنے لیکن اس کا حال اس سے زیادہ کہنا چاہیے کہ مثال دینے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری لے کر آ گئے ہم ان رستوں میں جب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دینے کا فیصلہ کر لیا دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے چلیں کیریئر بنے گا کچھ نہ کچھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی آپ میں سے جو لوگ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا میں ان سے بات کر رہی ہوں اس وقت بالکل یہ ایک ریلیجس تھنگ سمجھ کر آپ لوگ آئے ہیں سب آپ چلیں کچھ تو آخرت بنے چلیے کچھ تو ہمیں یہ ملے کچھ تو وہ ملے اور دس اینڈ دیٹ کرتے کراتے ہم یہاں پہنچ گئے وہ سب ملے گا لیکن اس سے بہت زیادہ جو ملے گا نہ آپ کے پاس وہ پیمانہ جس کو آپ بھر سکتے نہ آپ کے پاس وہ دل ہے جس میں اس چیز کو کنٹین کر سکے یہ تو جب ملتی ہے اور جب آپ کے اپنے تجربے میں آتی ہیں پھر یہ بات سمجھ آتی ہے اس سے برعکس یہ بات سمجھ نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی چھپی ہوئی نعمت ہے کہ جنت میں جا کر جب ہم جنت کا وہ ایک خاص ماحول اور مزہ دیکھیں گے نا فیلنگس جیسے آپ کہتے ہیں نا میرا دل اداس ہے کبھی آپ کہتے ہیں میرا دل خوش ہے کہتے ہیں نا ہر وقت کبھی کبھی ہماری نارمل فیلنگ ہوتی ہیں اس وقت نہ ہم اداس ہوتے ہیں نہ ہم خوش نارمل ریگولر فیلنگ سمجھ رہے میں جو کیا کہہ رہی ہوں جنت میں ہماری ریگولر نارمل جنرل فیلنگ کیا ہوں گی جو قرآن کی محفل میں ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے ٹرنکولیٹی پیس سکون خوشی اطمینان یعنی اس کو آپ لفظوں میں نہیں تول سکتے اور میں سوچتی ہوں کہ جو قرآن کی دعوت پہ آ گیا وہ تو جو آ گیا جس نے چھوڑ دیا جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا وجہ کوئی بھی بن جائے لیکن یاد رکھیے اس کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ محرومی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سیکیورٹی کنٹرول رکھا ہوا اس چیز میں جیسے بڑی بڑی امبیسیز ہوتی ہیں نا کسی ملک کی امریکہ کی امبیسی ہوگی پاکستان میں چائنا کی ہوگی امبیسیز جو ہوتی ہیں نا یہ بہت پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں آپ اگر آج بھی جا کر چیک کیجیے اسلام آباد میں جو یو ایس امبیسی ہے وہ شہر سے کافی ہٹ کے ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد اچھی خاصی باڑھ ہے مجھے اب تو مدت ہوئی نہیں گئے کبھی اتفاق ہوا تھا تو آپ کی گاڑیاں سب پیچھے رہ جاتی ہیں ایک ایسی جگہ پہ گاڑیاں روک کر آپ کو آگے جانا پڑتا ہے بسوں پہ انہی کی کہ صرف آپ کے ہاتھ میں آپ کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں گھڑی فون پیسے کچھ بھی نہیں ساتھ رکھ سکتے کیوں بھلا ایکسٹرا ایکسٹرا سیکیورٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی انتظام کیا ہوا ہے اس کو لینے کے لیے وہی آئے گا جو پورے دل سے اپنی ہدایت کا طلبگار ہوگا میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر لوگوں کو ہدایت کی ویلیو پتہ لگ جائے نا تو وہ ایڑیوں کے بل چل کے آئیں رینگ کے آئیں منتیں مرادیں ترلے جو بھی زبان استعمال کر لیں آپ تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے اور آپ سے بڑھ کر یہ میری خوش قسمتی ہے اس پہ اللہ کا دل کی گہرائی سے کہیے الحمدللہ شعور سے کہیے چونکہ چیز بڑی خاص ہے نا تو اس کے رستے کی رکاوٹیں بھی بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ کی دور کریں اب چلتے ہیں ہم غصے پہ چوتھے پارے کا جو مین تھیم تھا وہ غصہ تھا کچھ فائدہ ہوا کس کو غصے کی وجوہات گھر جا کر بھی یاد رہیں کتنی قسمیں پڑھی ہم نے غصے کی؟ سات. آپ کو اپنے اوپر لگا؟ اپنے بارے میں محسوس ہوا کہ میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنی سسٹرز ہیں، ہاتھ کھڑا کیجئے، جن کو محسوس ہوا کہ کچھ کمی ہے؟ الحمدللہ، یہ تو سیکھنے آئے ہیں. دیکھیں نا، لوگ اتنے ہزاروں روپے لگا کر چیک اپس کرواتے ہیں نا، اینول چیک اپ ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو ایک روٹین ہے، ہر وقت کی اپوائنٹمنٹس، کبھی دانتوں کی، کبھی کانوں کی، کبھی آنکھوں کی. یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں اس لیے جا رہے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ کہیں بیمار ہو نہ جائیں، کہیں اندر کھاتے اگر کوئی بیماری لگ چکی ہے تو وہ دور کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اس وقت آپ کا میرا یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اپنی فیملی کو کہ آج کل میں اپنے انٹرنل ٹیسٹ کروا رہی ہوں، فل چیک اپ کروا رہی ہوں. کئی دفعہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، شوگر ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ اور میں اپنے کردار کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں. تو ابھی تک جو چیز ہم نے غصے کے بارے میں پڑھی تھی، شریعت کے معاملے میں غصہ بہت پسندیدہ، لیکن اس کے اظہار میں زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کو خلاف شرع کوئی کام کرتا دیکھیں اور آپ غصہ نہ کریں یا آپ کے دل میں غصہ نہ آئے، تو یہ آپ کا عیب ہے، یہ آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے کہ غصے کو ٹیم کرنا چاہیے. اور اگلی بات کیا ہے کہ غصہ جو ہے اس کو زیادہ آتا ہے جس کو زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوتا. تقدیر پہ جتنا راضی رہیں گے آپ کا غصہ اتنا دور ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ غصے کے معاملے میں چند سلائڈز ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ ان کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ نے میں نے اپنے غصے سے کس طرح قابو پانا ہے. تو پہلی بات آپ دیکھیے کہ اگر آپ مقصد سے بے پرواہ ہیں، یو ڈونٹ نو وٹ از دا پرپز آف لائف، تو مقصد پہ نظر رکھیں. اپنی زندگی کا کوئی فوکل پوائنٹ بنائیں. جیسے ماں کا فوکل پوائنٹ اس کا بچہ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دل دھیان توجہ اسی کی طرف رہتی ہے. آپ بھی اپنی زندگی کا فوکل پوائنٹ چیک کیجئے، اور اگر آپ کا فوکل پوائنٹ کوئی انسانیت کی اصلاح، کوئی خیر کا ذریعہ بن چکا ہوگا نا، تو بس آپ کے نصیب جا کے. بیکاریت اور بے مقصدیت انسان کی زندگی میں محرومیاں لاتی ہے. بیکار بندہ ابھی بھی، یہ دیکھیں بچے کیوں شور کرتے ہیں نا، بیکار بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ان کو مصروف کریں، آپ ان کو کچھ دیجئے، آپ ان کو کوئی ایسا کام دے دے چاہے آپ کی نظر میں وہ بیکار ہے، لیکن ان کو لگے گا کہ اس سے اچھا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ شور کرنا چھوڑ دیں گے. تو آپ نے میں نے غصے کا بھی علاج کر دیا. وجوہات بھی ہم نے دیکھ لی نا، 6-7 ڈفرینٹ قسمیں، اور آپ نے میں نے اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ میری کون سی ہے، اور جب مجھے اپنی سمجھ آ گئی ہے تب اس کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مقصدیت پہ آ جائیے. فالتو بیٹھنا، اس نے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں تو بھولوں گی نہیں، میں تو معاف نہیں کروں گی، یہ بیکار لوگوں کے کام ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑنا تو ہے آپ سے، ٹائم نہیں ہے. باتیں تو بہت آتی ہیں پر اس وقت موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات دیکھیے کہ آج کے دور میں خاص طور پہ مسلمانوں کو جس ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ پنچ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تم کچھ نہیں، تم نکمے، تم بیکار، تم ایسے ویسے. تو مسلمانوں کو جو تسلیاں دی گئیں غزوہ احد کے سینیریو میں، اس سے آپ کو مجھے ایک عمل کا نقطہ ملا کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی محرومی آ گئی، شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، فلا تہینو، کوئی بات نہیں، وانتم الاعلون. قرآن کہتا ہے تم ہی بلند ہو، کیا ہوا اگر احد میں تھوڑی سی جھٹکے آ گئے؟ تو یہ عمل کی بات لکھی ہے. محرومیوں پہ قابو پائیے. زندگی کے سفر میں بیک مرر میں نہ دیکھیں. جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں ان کو خوب پتہ ہے کہ ونڈ سکرین، جو ونڈو ہوتی ہے سامنے، وہ بڑی سی ہوتی ہے، اور بیک مرر چھوٹا سا اوپر ایک لگا ہوتا ہے. بس اتنا ہی کام ہے آپ کی میری زندگی میں ماضی کا. اگر ہم پچھلی تلخیوں، محرومیوں، ہائے میں پیدا ہوئی پھر میری ماں مر گئی، او ہو میں 2 سال کی تھی تو باپ فوت ہو گئے، ہائے میرا تو کوئی بھائی نہیں، مٹی ڈالیں، بس. ٹھیک ہے؟ تیسری چیز، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کی دعوت ہے اس میں، کیونکہ قرآن آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا. پکی بات ہے، 100% بات ہے. آج یہاں آتے سے پہلے گھر میں کوئی دکھ تھا، کوئی تکلیف تھی، کوئی جھگڑا تھا، کوئی بیماری تھی، मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर इस वक्त आप इस मौजू को समझने में है ना, तो आपको याद भी नहीं रहेगा, थोड़ी देर पर याद ही नहीं रहता, जाते हुए ख्याल आएगा ओहो सुबह क्या था। फिर इसी तरह आप देखिए, उम्मत मुस्लिमा को एक दावत दी गई है, क्या? अगर तुम दीन के आला दर्जे पे फायज होना चाहते हो तो अपनी मनपसंद चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे दो। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को संभालते और समेटते और उन्हीं के गम खाते रहते हैं ना, तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि हम अपने आप को इतना थका लेते हैं कि हम गुस्से में रहते हैं। फिर आप देखिए कि हमने चौथे पारे में लैसल बिर्रा में नेकी के मफहूम देखे थे, जन्नत भी और अल्लाह की रज़ा भी है। हज़रत इब्राहिम का तरीका देखा था, हनीफ थे। खाना का बस सबसे पहली इबादत गाह है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई थी, और वहाँ से हिदायत के सूते फूटते हैं। फिर हज का तذکرہ आया तो उससे हमने ये सीखा था कि हज इज्तमाईयत का सबक देता है, ठीक है। फिर इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला ने एक वार्निंग दी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातीही, अल्लाह से इतना डरो जितना डरने का हक है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जब पसंदीदा चीज़ों के खर्च करने की बात होती है तो सिर्फ माल ही नहीं है, बल्कि हमें अपनी अना का सदका करना है। किसी को माफ़ कर देंगे, किसी ने आपको कोई बात की आपको चुभ गई, छोड़िए मुझे ही चुभी है ना, मैं हूँ क्या, मेरी औकात क्या, ठीक है। फिर अल्लाह से हनीफ होने की दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे फोकस्ड कर दे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हमने ये सीखा कि तकवा को शऊर के साथ हासिल करना है, और अल्लाह के दीन के तकाज़ों को घर के तकाज़ों पर फौकियत देनी है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इस वक्त आज के दौर में हम मुसलमानों ने सीखनी है। हम अपनी सहूलत के मुताबिक तो हमेशा ही दीन के काम करते कराते हैं, लेकिन जब अपनी सहूलत ना हो तो भी करने हैं। ये है आला दर्जे पाने वालों का अमल, ठीक है। फिर इसी तरह माल की मोहब्बत रखना, गैर मुनज़्ज़िम होना, एक लीडर की बात को अहमियत ना देना, ये उम्मत मुस्लिमा का शौर नहीं है। ये सारी गलतियाँ हो गई थी ओहद के सिनेरियो में, तो का कोई बात नहीं, आइंदा ऐसा ना करना। नबी सल्लम ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी सुनी थी, भूल गए बाद में, मिसअंडरस्टूड हो गए, कोई बात नहीं, इंसान थे, सहाबा भी इंसान थे, सहाबा से भी गलतियाँ हुई थी, अल्लाह ने माफ़ कर दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, जन्नत की कोशिश और तलब के लिए आमाल की तड़प रखना है। जब तक आप और मैं अमल नहीं करेंगे, और अमल करना आपकी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होगा, तब तक याद रखिएगा, जन्नत बस एक ख्वाहिश तो हो सकती है, एक तमन्ना तो हो सकती है, इरादा हो सकता है, लेकिन वो जन्नत हकीकी जन्नत नहीं है। वो ख्वाहिशों की जन्नत हो सकती है, वो अहमकों की जन्नत हो सकती है, लेकिन ये वो जन्नत नहीं है कि जिसका वादा अल्लाह ने ईमान वालों के लिए किया। ज़रूरत इस बात की है कि आप और मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें। फिर इसी तरह से गुस्सा करने के असबाब ढूंढते हुए गुस्से का इलाज करने की कोशिश करनी है। किसी काम की नाकामी की सूरत में शिकस्ता दिल होना या गम खाना सलाहियतों को सल्ब कर लेता है, इससे बचना। हसरत, यास और काश के अल्फाज अंदेशों की दलील हैं, इनसे हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी है। मत करें, आप अपने आप से पूछें, मैं कितनी दफ़ा दिन में काश कहती हूँ, काश ये ना किया होता, नहीं, काश कहना छोड़ दीजिए, जो हो गया बस उसके ऊपर फोकस कीजिए। फिर इसी तरह जहालत से हिदायत की तरफ और गुस्से से सब्र की तरफ हिजरत करनी है, बोलिए इंशाअल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिए, लोगों को इल्म देंगे, लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने के लिए इस किताब के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। नियत करते हैं, वल तकुम मिन कुम उम्मतुन यदून इलल खैर, दुआ कीजिए अल्लाह इस गिरोह में लिख ले, पौश ग्रोह है ये, इन लीड्स। किसी सोसाइटी की क्रीम कौन होते हैं आपको पता, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं। यानी इस वक्त मैं आप सबसे जो मुखातिब हूँ ना, आप इस सोसाइटी, इस जोहराबाद की क्रीम है, बिलीव मी। मैं नहीं कह रही ये अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के नबी ने कहा है, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिस बंदे के साथ खैर का इरादा कर ले, यानी जिसको अल्लाह खुशकिस्मत बनाना चाहता है उसको दीन की समझ देता है। तो आपका यहाँ आके बैठ जाना, मेरे लिए तो इस बात की दलील है कि आप इस सोसाइटी की क्रीम हैं, इन लीड्स हैं आप इस सोसाइटी के मलाह हैं। अल्लाह ने आपको इस कुरान की छत के नीचे भेज दिया कि जाओ सीखो और सीखो, जिनमें खैर होती है अल्लाह उनको कुरान के लिए ले आता है। तो अपने आप को इस पे मुबारक दीजिए। फिर उसके बाद हमने देखा था सफ़ेद और स्याह चेहरों वाले, तो उससे मुराद अहले सुना और अहले बिदा हैं। नीयत क्या करनी है? हमेशा सुन्नत के दायरों में रहकर काम करें, नए और नित नए तरीके इख्तियार नहीं करने। फिर इसी तरह उम्मत वसत, कुन तुम खैर उम्मत नुखरिजत लिन्नास, उनका तस्करा था तो हमने अपने लिए भी यही क्राइटीरियन बनाना है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ही रखे। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करना चाहते हैं, नुस्खा लिखा था आपके इस बारे में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। और फिर जन्नत में जाने वालों का तذکرہ था तो पता चल गया कि जन्नत सिर्फ दुआओं या ख्वाहिशात से नहीं बल्कि अमल से मिलती है। और आयत 147 में एक दुआ थी जिससे ये पता चलता है कि जो काम इंसान अपनी कोशिश के बावजूद ना कर सके तो इसके लिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। आप मैं बहुत सारे काम अपनी कोशिशों से करवा लेंगे, लेकिन बहुत सारे काम हम अपनी कोशिशों से नहीं करवा सकते, नहीं होंगे हमसे, हम मजबूर हैं। वहाँ जाकर फिर हाथ रख दीजिए, जैसे बच्चा पूरी कोशिश कर लेता है, ऊपर से ऊपर कुर्सियों पे स्टूल रख के इधर से उधर ऊपर हाथ रखे और जाके वहाँ से जो टॉफियों का या चॉकलेट्स का डब्बा उतारे, जब नहीं उतर पाता ना तो फिर माँ के पास आता है कि मामा आप मुझे दे दीजिए। आप मैं अपनी कोशिशें करके अपने आप को अल्लाह के आगे इस तरह बेबस कर दें कि मेरे मालिक मैंने हार मान लिया, मैं जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन भी जितनी मजबूर थी ना आज भी उतनी ही मजबूर हूँ, तू मेरे लिए इस काम को आसान कर दे। ठीक है, तो दुआ मांगना असल में अपनी आजजी और बेबसी का इजहार है। फिर एक बहुत गहरा असूल हमने सीखा था कि जब उम्मत नबी सल्लम के बताए हुए तरीक़ों से दूर भागे तो अल्लाह ताला इसके बदले में इनकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई गम डाल देता, जैसे उहद का गम था। तो आज अगर ज़िंदगी में इज्तमाही या इनफरादी तौर पर कोई गम आए इस बात पर तब गौर कीजिएगा। फिर मुहासबे का एक नुक्ता हमने देखा था कि इंसान की ज़िंदगी में कमियाँ होती हैं, अगर वो इन्हें दूर ना करे तो शैतान को बहकाने का मौका मिल जाता है। तो हमेशा अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपनी महरूमियाँ या अपने कुछ वीक पॉइंट्स है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये ऐसी है कि जैसे जिस्म में कोई बीमारी है ना तो जल्दी से इलाज करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी बढ़ के किसी बड़ी बीमारी में बदल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड से देखिएगा लफ्ज़ हसरत। नबी सल्लम ने फरमाया काश का लफ्ज़ शैतान के काम को शुरू कर देता है, काश नहीं बोलना। फिर कामयाब लीडर कौन थे? फ़बीमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहुम, अल्लाह के नबी एक बेहतरीन और कामयाब लीडर थे। और आयत 161 में गलत फहमी का जवाब है कि माल गनीमत के मामले में मुगालता लग गया, कोई बात नहीं, जो अमानत का दर्स दे रहे हैं नबी वो ख़ुद कैसे खयानत कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों को लगा कि अल्लाह के नबी ने एक चादर जो थी वो अपने इस्तेमाल के लिए निकाल ली होगी, इन चीज़ों में से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, तुम नबी से ये तवक्को करते हो। तो असल में जिनके दिलों में खोट होता था ना वो ऐसे मुगालते लोगों के दिलों में गाहे बगाहे बड़े प्यार से डाल देते थे, हमें क्या पता पैसे किधर जाते हैं, हमें क्या पता ये कौन करता है क्या। अब अल्लाह के नबी के कान तक बात चली गई, आपका दिल दुखा, तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी की सच्चाइयाँ पेश कर दी कि नबी से ना ये सोचा करो, ये असल में तुम्हारे अपने दिल की खबासते हैं जो तुम नबी के नाम पर लगाते हो। फिर इसी तरह दुआए खलील की कबूलियत, क्या ऐसा नबी भेजा जिसने सब का तज़किया किया। और आयत 185 में मौत का जिक्र था तो मुहासबे का नुक्ता क्या था? क्या मैं मरने के लिए तैयार हूँ? तो यहाँ तक तो उस सूरत आले इमरान का खुलासा है ना, सूरत निसा का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा हमने पढ़ा। सूरत आले इमरान के आखिर में चार नुकाती एजेंडा था, इसबिरु साबिरु व रबितु वत्तकुल्लाह, सब्र, इज्तमाई मुश्किलात पे सब्र, इस्तकामत और तकवा अख्तियार करो। और सूरत निसा शुरू होती है मुआशरती मसाइल के साथ, مثلا نکاح کے کیا احکامات ہیں، آج ہم پڑھیں گے پانچویں پارے میں، یتیموں کے حق کا تذکرہ تھا، وراثت کے احکامات، ہم جنس پرستی کے احکامات اور حق مہر کے مسائل، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پورے پچھلے پارے میں جو چیزیں پائی تھیں، پھر اس کے محاسبے کے نقطے ہم نے ساتھ ساتھ کچھ دیکھے تھے، باقی آپ کو شیٹس کی صورت میں مل رہے ہیں، تو بس کام کیا ہے کہ محاسبہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک ایک لفظ جو میں بولتی ہوں یا میں نہیں بھی بولتی تو آپ خود سے لکھ لیا کریں کہ میرا اپنا عمل کیا ہے اس کے بارے میں، اور حقیقت ہے کہ حاسبو قبلاً تو حاسبو، اپنا حساب ایسے ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا کیا جائے۔ پھر پارہ نمبر چار میں سے یاد رکھنے کی باتیں کیا تھیں؟ نمبر ایک، اپنی پسندیدہ چیزوں میں کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سب نہیں کچھ تو کر دیجئے۔ پھر دوسری بات ہے، روح اور دل اللہ کا کلام مانگتے ہیں، کہیں اور لگائیں گے تو نتیجہ بے سکونی کی صورت میں نکلے گا۔ علاج کیا ہے؟ حنیف ہو جائیں۔ اس وقت بھی آپ اگر اس وقت بھی فوکسڈ ہو کے نہیں سن رہے تو آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کو بھی سے بتا دوں، سب کام چھوڑ کر اس کام پہ آ جائیے جس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر اسی طرح تیسری بات اس بارے میں سے کیا ہے یاد رکھنے کی؟ اللہ تعالیٰ ان کو جما لیتے ہیں جن میں خیر ہوتی ہے۔ دعا کریں اپنے لیے، اللہ مجھے جما لے اس رستے میں۔ پھر چوتھی چیز تھی سستی اور غم، ایمان کو کھا جاتا ہے، سست نہیں ہونا، اور غم تو ویسے ہی بندے کی ہمت کم کر دیتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتوں میں پانچویں بات، حدیث ہے آپ کے سامنے، کاش کہنا شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، تقدیر سے لڑنا نہیں اس کو ماننا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ خلاف شریعت کام پر غصہ نہ آنا اس بات کی علامت ہے کبھی اپنے دل میں ایمان پکا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ چلیے اس پارے کا اہم نقطہ، جب مجھے غصہ آئے تو میں نے کیا کرنا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ نمبر ایک، گہرے سانس لینے ہیں، آ رہا ہے کسی کو اس وقت بھی؟ ذرا لے کے تو دکھائیں، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، لمبا سانس، ٹھیک ہے؟ اس سے بندے کے اندر ایسے آپ دیکھیں نا زیادہ آکسیجن جائے گی تو انرجی ملے گی آپ کو۔ دوسری بات، اللہ سے مدد مانگیں، وجہ تلاش کریں، کیوں آ رہا ہے غصہ مجھے، اور کچھ کو تو بلا وجہ ہی آتا رہتا ہے، ہاں؟ پھر مصروف رہیے، فارغ ہیں تو غصہ آئے گا، اپنے آپ کو مصروف کر لیں غصہ چلا جائے گا۔ اور ایک اور طریقہ بڑا ہی خوفناک، عین غصے کی حالت میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں، کیسی لگ رہی ہوں اس وقت، چیخ نکل جائے گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کا معصوم سا بچہ آپ کی کون سی شکل دیکھ رہا ہے اس وقت، اور آپ کی ماسی جس کا رنگ اڑ گیا آپ کو دیکھ کر وہ دیکھ کیا رہی ہے۔ تو غصے کی حالت میں آئینہ دیکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی سوچئے کہ غصہ مجھے جلدی بوڑھا کر دے گا، ہونا چاہتے ہیں بوڑھا؟ نہیں ہونا چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں پیچھے بہت ساری تھیں، آج کے بارے میں کوئی بھی دعا نہیں تھی، یہی ہے دین کا حسن، کبھی بہت کچھ، کبھی کم، کبھی کسی طرح سے، کبھی کچھ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کچھ سوالات چوتھے پارے کو پڑھنے کے بعد جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، خود سے پوچھئے، میری دوستیاں اور میری محبتیں کس کے لیے ہیں؟ یعنی کیا میں اللہ کے لیے دوستی کرتی ہوں اور محبت کرتی ہوں، یا کسی اور وجہ، یعنی پیسے کے لیے، اور کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ عمار بن حمام کے واقعے سے کیا سیکھا یاد ہے؟ واقعہ کھجوریں کھا رہے تھے اور پھر چھوڑ دیا بیگ، وہی واقعہ۔ کیا ہم بھی اتنا یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے؟ پھر اسی طرح دعائے خلیل کی قبولیت، قرآن کا واحد مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا وہ کون سی آیت ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، نمبر جا کے خود ڈھونڈیے گا۔ پھر اگلا سوال ہے، ہم کیوں ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کے لیے تھک جاتے ہیں؟ مثلا کئی لوگ دورہ قرآن کے بعد تھک چکے ہیں، گھر بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کرنا، کر تو لیا، اب اگلے سال، پھر اگلی وجہ، پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے ساری چیزوں کو آسان کریں۔ غصے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، میں سچ بتا رہی ہوں، لیکن یہ چلتا رہے گا، क्योंकि आपकी मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते ही रहेंगे ज़िंदगी भर कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने अपने दरपेश रहेंगी कि जिससे गुस्सा आएगा, और करते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंशाल्लाह अपने ऊपर काबू पा लेंगे। इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में एक वाक़या किसी का सुन रही थी कि वो कैसे एक शख्स ने उनको गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश की, बार बार की, आखिर तक वो गुस्से में ना आए तो उस शख्स ने हाथ पकड़ लिए, कहने लगा मैं तो आपको आजमाने आया था और आप कामयाब हो गए। यानी मेरा ये गुमान था कि आपकी शोहरत बड़ी है, बड़े अच्छे उस्ताद हैं, तो मैं देखता हूँ भला आप कैसे हैं, लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की आपको गुस्सा दिलाने की, आपको गुस्सा नहीं आया। तो याद रखिए सब्र, ज़िंदगी के सफ़र में अपने आप को मुतमईन रखना है तो गाड़ी चलाने वाले की तरह, हर गाड़ी से टकराना नहीं है। आप अगर गाड़ी अगली से टकराएंगे तो आपके भी गाड़ी की लाइटें टूटेंगी, डेंट आपके भी बोनट पे पड़ेगा। अच्छे ड्राइवर की तरह चंद मिनट पहले ही गाड़ी रोक लें। आपकी कामयाबी ज़िंदगी की यह है कि आपके घर में झगड़ा कम से कम हो। आप अच्छी बीवी हैं ना, पता लग जाना चाहिए कि किस बात पे गुस्सा आता है और फिर शौहर नाराज़ होते हैं, पहले ही रुक जाइए। आप अच्छी बेटी बनी है, क्यों माँ और बाप को गुस्सा दिलाते हैं कि अब वो गुस्सा कर करा लें तो ही आप उनके आगे चीख चिल्ला के दरवाज़ा पटक के कमरे में जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अक्लमंदी क्या है कि बंदा वक्त से पहले रुक जाए। और याद रखिए कि गुस्सा ईमान को कड़वा कर देता है, हदीस है बेशक गुस्सा ईमान को ऐसे फासिद कर देता है जैसे इलवा, कड़वी सी एक चीज़ होती है, शहद में डालें तो शहद तक उसकी वजह से कड़वा हो जाता है। यानी जैसे इलवा जो शहद को कड़वा कर देता है, गुस्सा भी ईमान को बिगाड़ देता है, ईमान की चाशनी ख़त्म हो जाती है। और नोट कीजिए कि कितने ही गुनाह ऐसे हैं कि जो बंदा आम हालात में कभी नहीं करता, गुस्से में कर लेता। अपना ही खाना सामने पकड़ के प्लेट ज़ोर से दीवार पे मार देंगे, अपने आप को नुकसान देते हैं। माएँ अपने बच्चों को पीटना शुरू हो जाती हैं, बाद में खुद बेहोश हो जाती हैं, जब बच्चा रोता है माँ से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता। गुस्से की एनर्जी है, तभी तो गुस्से में लोग चीज़ें तोड़ थाड़ देते हैं। और अबू दाऊद की रिवायत है कि सख्त गो और दुरुस्त गो आदमी, यानी सख्त बोलने वाला आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तो नोट करिए, गुस्से का और बदज़ुबानी का आपस में गहरा ताल्लुक है। गुस्से में इंसान अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं रखता और उल्टा सीधा बोलता है। ये तलाक़ें कब होती हैं? लोग पूछते हैं नहीं वो तो उन्होंने गुस्से में तलाक दी थी। अच्छा जी, तो कभी कोई प्यार में भी तलाक देता है? कोई मोहब्बत में भी कहता है आई लव यू दैट्स वाई मैं तुम्हें तलाक देता हूँ? यही तो इम्तिहान है। तो इंसान हमेशा अपने ऊपर लेकर सोचे, जो वजह है उसको अच्छी तरह देखिए। आपको 7-8 किस्में लिखाई गई हैं, हर एक को बेहतरीन तरीके से टैकल कीजिए। और फिर भी अगर आप में से किसी को अपना कोई पर्सनल इशू ना समझे, लिख के अपने नाम और उसके साथ दे दीजिए, आपको उसका जवाब लिख के दे दिया जाएगा। क्योंकि आपने मैंने करना आज पे रहे, आज पे जिए, कल छोड़ दीजिए। आपके माँ बाप ने आपकी अच्छी तरबियत नहीं की, हो गई ख़त्म, अब आप आगे अच्छे बने, अपनी सोच से करैक्टर बनाएं, कल अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर लीजिएगा। आपके साथ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कईयों को तो इस पे गुस्सा आता है कि मेरे अम्मी अबू काले क्यों हैं इसलिए मैं भी काली हूँ, मेरे अबू ने एक काली औरत से शादी किया, माँ काली थी तो मैं भी काली हो गई। बिलीव मी, कई लोगों को अपनी शक्लो सूरत की वजह से माँ बाप पर गुस्सा आ रहा होता है, तरबियत की वजह से गुस्सा रहता है। मुझे डॉक्टर क्यों बना दिया, मुझे नहीं बनना था। अच्छा, मुझे डॉक्टर बनना था, अम्मी अबू ने हाफिज़ बना दिया, हो गया, छोड़ दीजिए, पीछे जाइए, आगे देखिए, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। यकीन करें, अगर आज से टूडे आज अपनी डायरी में अपनी नोटबुक पे लिखिए, मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है, मेरी अपनी ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत हो जाएगी। यकीन करें, आज से अपने आप को चेंज करें। साबर बंदा दुनिया के हर मैदान में जीता, कोई उसको कुछ भी कह दे नहीं। और कुरान में सूरत लुकमान आयत 17 में अल्लाह ने कहा ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हदीस में आता है कि एक शख्स को क़यामत के दिन मैदान में लाया जाएगा, बहुत बड़ी नेकियाँ नहीं थी उसके पास, पर एक नेकी थी कि जब किसी से उसने पैसे लेने होते थे तो जब उसके करिंदे वसूल करने जाते थे तो कहता था ज़रा आराम से बात करना, अगर वो नहीं दे सकता तो नरमी का मामला करना। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा जैसे तू मेरे बंदों पे नरमी करता था, आज मुझे भी गुस्सा तो तेरे पे आया हुआ है लेकिन मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ें होंगी। और अपने आप को हमेशा ये चीज़ के साथ सोचा करें कि ये मेरे लिए चैलेंज है। अब एक दो सवाल बनते हैं, मसलन आपने अपने गुस्से पे तो काबू पा लिया, दूसरे के गुस्से पे कैसे काबू पाए? मसलन बच्चे का गुस्सा, आपका बच्चा बड़े गुस्से वाला है, तो आप देखिए कि आप पहले नोट कीजिए कि उसकी इन सात में से किस्म क्या है, रीज़न ढूंढिए, फिर उस बच्चे के साथ बैठ के बात कीजिए, रीजनिंग कीजिए, आप उसकी जगह अपने आप को लेकर देखिए, हो सकता है आपको उसको टोकने का अंदाज़ ही बड़ा बुरा हो, आप उसके बेस्ट फ्रेंड के सामने उसकी बेइज्जती कर दें। अब आपके लिए वो छोटा सा बच्चा 10 साल का, पर उसके लिए सदर से भी बड़ी चीज़ है। तो कई दफ़ा हम अपने बच्चों के गुस्से की वजह खुद होते हैं, हर वक्त रोक टोक, हर वक्त ये करना, हर वक्त ये करो, ये भी अच्छा तरीका नहीं होता। आर दिलाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, ताने देते हैं। तो छोटे बच्चे हों या जवान होने वाले बच्चे हों, दोनों के साथ डील करना सीखिए, और अपने बच्चों को आप खुद डील कर सकते हैं। माँ से ज़्यादा कोई अपने बच्चे का गुस्से की वजह नहीं जानता। और फिर आप बच्चे की डाइट भी देखिए, ओवर डाइट तो नहीं कर रही हैं आप, हर वक्त मीठा तो नहीं खा रहा, हाइपर है। ये जो बच्चे क्यों रोते रहते हैं, पहले तो नहीं रोते थे, 6 6 8 8 बच्चे होते थे माओ के, अरे घर में वो कहती हैं जहाँ बिठाते थे 15 मिनट बाद आधे घंटे पर आना तो आके उनको हिला जाना, हिलते ही नहीं थे। आज एनर्जी बहुत है, बच्चों को हम कोक और मीठे और चॉकलेट्स और बिस्किट हैवी डोज फूड देते हैं, तो फिर उन्होंने तो उछलना कूदना है ना। ठहराओ, सुकून, इत्मीनान। अब सवाल एक बहुत ही, जिसका जवाब लेने के लिए कुछ मैरिड सिस्टर्स परेशान हैं कि शौहरों का गुस्सा कैसे दूर करें। है किसी का शौहर गुस्से वाला? मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है ना किसी का। देखिए एक बात छोटी सी बताऊं, हर औरत को ये लगता है मेरे शौहर में बड़ा गुस्सा है लेकिन मेरी दोस्त का शौहर बड़ा ठंडे मिजाज का है। और मेरे ख्याल अक्सर मर्दों को भी यही लगता है, मेरी बीवी बड़ी फोहड़ है, हाँ मेरे दोस्त की बीवी बड़ी समझदार है। आप कितने साल हो गए उनके साथ रहते हुए? 5 साल, 10 साल? नहीं, शादी हुई है ना अगर आप में से किसी की, तो उसका तो जेन्युइन इशू है। मैं मानती हूँ 1 2 साल में नहीं समझ आ रही होती कि ये मशीन चलती कहाँ से और रुकती कहाँ से है, और ये मशीन फास्ट फॉरवर्ड कहाँ से हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो अनएक्सपेक्टेड किस्म का माहौल होता है। शुरू में तो ये नहीं पता चलता कि ये रूठे हुए क्यों हैं, मैंने इनको क्या कह दिया है, यकीन करें नहीं पता चलता। अच्छा वो रूठ गए, अच्छा ये रूठे हुए थे, मैं समझी, वैसे ही आज गौर व फिक्र में मसरूफ़ है। लेकिन 5 साल गुजर जाएं आपके एक मर्द के साथ, ये कभी हो नहीं सकता कि आप उसके अंदर की एक एक रग रेशे को ना जान लें। फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है ना। समझ होती हैं वो बीवियाँ जो अपने मर्दों का मिजाज नहीं समझती। कई मर्द बचपन से लेकर जवान होने तक एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनको किसी के तकाबुल में रखा गया होता है, छोटा भाई बड़ा भाई, घर में ही दुश्मनियाँ माएँ खड़ी कर देती हैं। ये तो मैं आपको नसीहत करूँगी, कभी अपने दो बच्चों को बीच में तकाबुल पे ना लाएं, सारी उम्र के लिए नफरत का बीज बो देंगे। अब आपको जो शौहर मिला वो डिप्रेस्ड चाइल्ड था, यानी वो ज़रा दबा हुआ था, शरीफ था, ये था जो था, लेकिन अब उसकी शख्सियत तो कुचली हुई थी। आप गई उनके घर, अब थोड़े दिन तो शुरू में जो चलता है वो चला, उसके बाद अब आपने भी उसके साथ वही शुरू कर दिया। आप सोचते हैं आप उठते नहीं, आप काम नहीं करते, वो जो सारी उम्र के ताने सुन रहा था कि चलो घर में एक और मास्टर आ गया, एक और उस्तानी आ गई मेरे ऊपर, वो आपके साथ भी चिढ़ेगा। पहले जाके स्टडी कीजिए, पढ़िए, यकीन करें किताबें पढ़नी बहुत आसान है, इंसानों को पढ़िए, और ये एक पूरी स्टडी है। एक आलिम थे, वो कहा करते थे कि तुम मेरे सामने 10 औरतों के हाथ की रोटी लेके आओ, मतलब रोटी पकवाओ औरत से और ले आओ, और 10 रोटियाँ हो 10 लोगों की, मैं उस रोटी को देख कर उस औरत का मिजाज बताऊँगा। और इट्स ट्रू। जूती बाहर कैसे रखी हुई है? मैं कई जूते देख कर दिल चाहता है पूछूँ ये किसका है, जूतों से पता, चलने के अंदाज से पता चलता है, लिखने के अंदाज से पता चलता है, आंखें खोलने के अंदाज से पता चलता है, ये एक पूरी लैंग्वेज है जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि आप समझें, किसी को अपने शौहर को देना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। आप बहुत बहादुर हैं, चाहे वो मक छिपकली दे के भाग जाए, लेकिन अच्छी बीवियाँ अपने शौहरों की कमियाँ पूरी करती हैं। किसी को ज़रा दबाना पड़ेगा, कुछ को माँ बाप ने इतने लाड़ दे के बिगाड़ा होता है, वो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं हर वक्त, दबके दाबे और गुस्सा, और जो उन्हें कहते हैं देखें आराम से, आज कर लिए ये मैंने बात बर्दाश्त, आइंदा नहीं करूँगी, आधा जुमला बोल कर बाद में जाकर रूह अफ़ज़ा का ग्लास दे आए। खेल नहीं है, बिलीव मी इट्स नॉट अ गेम, ये आसान नहीं। गाड़ी चलानी बड़ी आसान है जो कुछ लोग डरते हैं, कंप्यूटर तो उससे भी आसान है जिसको लोग पकड़ते ही डरते हैं, पता नहीं करंट ही लग जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग हैंडल विद केयर कंप्यूटर्स को करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को करेंगे, गैजेट्स को करेंगे, इंसानों को हम अक्सर हैंडल विद नो केयर इस्तेमाल करते हैं तो इंसानों को हम खुद ज़ाया करते हैं। इसको सीखिए, दुआ मांगिए, बस अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि आप दुआ करें कि अल्लाह मैं जिनके बीच में रहती हूँ ना मुझे उनका मिजाज एडजस्ट। चलिए एक और गुस्सा कर लें, सास गुस्से वाली बड़ी हैं, किस किस की, अब आई ना हो साथ। कुछ लोगों को लगता है ना कि सास, मेरी सास बड़ी गुस्से वाली है, कुछ को बहू पे भी हो सकता है। यकीन करें 5 मिनट का काम है गुस्से वाली सास को ठंडा करना। वीक पॉइंट पहचान लें, मसलन एक मिसाल दे देती हूँ, दी हुई है पहले भी कुछ ही, उसी में कुछ ऐड कर लें। आप देखिए कि एक ही घर में दो बहुएं होती हैं, एक सास से डरती है, दूसरी से सास डरती है। फ़र्क किस बात का? आप कहते हैं वो भाई की बेटी है ना इसलिए मैं गैरों से आई हूँ बेचारी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भाई की बेटी को पता है मेरी फूफी शुरू से तारीफ पसंद है। उसने 4 लोग आने हैं घर में, कोई हमसाई, कोई मोहल्ले वाली, कोई गली वाली, उसने सास की तारीफें शुरू कर देना है। अम्मी जी बड़ी अच्छी हैं, अम्मी जी मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं, अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी ने भूल जाना, कहते नहीं नहीं ये भी बड़ी अच्छी है। वो अम्मी जी की तारीफ़ें करती है, अम्मी जी को डोज मिल गई। बात, सासों को सिर्फ तारीफ चाहिए होती हैं। आप सारा दिन जूं बन के काम करती रहे उनको कुछ नहीं लगेगा, उनका दिल जब चाहता है उनकी हमसाई आए साथ वाली तो ये तारीफें शुरू कर दे तो कर दीजिए, दिल पे हाथ रख ले, बाद में जाके डिस्प्रिन की गोली खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, अम्मी जी तो खुश रहेंगी ना। इसी तरह एक सास है, ये मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए हुए हैं। एक बहू जिस नतीजे पे पहुंची बाद में सारी बात की, वो कहती कि बड़ा ही नुस्खा कामयाब रहा है। और वो नुस्खा क्या था आपको पता? हर महीने 5 पाउंड 10 पाउंड जितने भी हैं इसका कोई तोहफा ला के अम्मी जी को दे दिया करो। अम्मी जी मैं बाजार गई थी आपके लिए पर्स लेके आई हूँ, अम्मी जी ये मैं बाहर गई थी बाजार ये आपके लिए लिपस्टिक लेके आई। अम्मी जी खुश, उनको चीज़ों का शौक है। अम्मी जी ये मैं बाहर गई थी आपका स्काफ लाई हूँ, तोहफा दे दीजिए। यकीन करें कि आप आराम से बैठ के काम करें, देखिए अम्मी जी आपके गुण गाएंगी। तो हर एक का एक इशू होता है, कुछ का खिदमत होता है, कुछ को होता है 5 मिनट बैठ के उनकी बातें सुन लें रोज़, कोई उनसे दिल का दुख सुन लें, कोई उनकी बात सुन लें। तो आप यकीन करें कि जब हम बच्चियों को ये सब कुछ सिखा के आगे भेजते हैं काफ़ी चीज़ें पहले ठीक हो जाती हैं। मसला क्या है कि हम तब पहुँचते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ जबकि पानी सर से गुजर चुका होता है। तो ऐसा ना हो कि हम आज भी गुस्सा ही करते रह जाएँ और आज के पारे की बारी ना आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस और जो मुख्तलिफ मराहल हैं उससे बेहतरीन और आसान दर्जे पर निपटने वाला बनाए। और एक बात कह के ख़त्म करती हूँ फिर आगे दूसरी तरफ चलेंगे, और वो बात क्या है, एक शख्सियत को अपना लें रोल मॉडल के तौर पर। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी ज़िंदगी के बारे में जान लीजिए कि आप क्या करते थे, किस मौके पे आपने कैसे रिएक्ट किया, आपने लोगों को कैसे देखा। आप यकीन कीजिए कि आपको मुझे 90% अपने मामलात को डील करना आ जाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान वही थे। आज हमने उनको पीछे डालकर दूसरी दूसरी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी के तरीक़ों पे चलने की तौफीक अता फरमाए।